सुख प्रभातम प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आशा करता हूं आप कुशल होंगे। आज हम कक्षा 10 के व्याकरण भाग का एक महत्वपूर्ण अंग रस, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, साहित्य का नाम आते ही रस का नाम स्वतः आ जाता है। इसके बिना साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती। भारतीय साहित्य शास्त्रियों ने साहित्य के लिए रस की अनिवार्यता को समझा और इसे साहित्य के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यक अंग बताया। वास्तव में रस काव्य की आत्मा है। किसी साहित्य को पढ़कर जब व्यक्ति कविता के भावों में तादात्म्य स्थापित कर लेता है, तब इस प्रक्रिया में उसके मन के स्थायी भाव रस में परिणित हो जाते हैं। इस तरह काव्य से जो आनंद प्राप्त होता है, वह जीवन के अनुभवों से प्राप्त अनुभवों जैसा होकर भी उससे ऊंचे स्तर को प्राप्त कर लेता है। यह आनंद व्यक्तिगत संकीर्णता से अलग है। और रस किसे कहते हैं? रस के क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है? रस शब्द की व्युत्पत्ति रसते असौ इति रसः, संस्कृत का एक वाक्य है। रस शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं, इसका डिफाइन करते हैं, तो वहां पर इसका व्युत्पत्ति करते हुए बताते हैं, रसते असौ इति रसः, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए, जिसको चखा जाए। ये रस का आस्वादन, आप खाने वाली चीजों के रसों का आस्वादन, वो छह प्रकार के रस होते हैं जो हम जो हमारे जो जीव का जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, वो छह प्रकार का होता है। उसका आस्वादन हम करते हैं भोजन का। ठीक उसी प्रकार से हमें आंतरिक आनंद प्राप्त होता है जब हम किसी साहित्य को पढ़कर जो आनंद प्राप्त होता है, या किसी सीन्स को देखकर, किसी दृश्य को देखकर जो हमें आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद को भी रस कहते हैं। अब वो आनंद हमें अंतःकरण में प्राप्त होता है, न कि जिह्वा जैसे किसी भाग में। तो जिसका आस्वादन किया जाए, कहां से आस्वादन किया जाए? आंतरिक भाव से, वही रस है। परंतु साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अध्ययन देखने से जो आनंद प्राप्त होता है, उसे रस कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। सर्वप्रथम संस्कृत के या नाट्य शास्त्र के कवि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था। रस की निष्पत्ति के संबंध में उन्होंने लिखा है, विभावानुभाव व्यविचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस बनता कैसे है? आपके अंदर जो रस की उत्पत्ति होती है, जो आपको आनंद प्राप्त होता है, उसका बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है, बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है जो हमें अनुभव नहीं होता। इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया है जो हमें अनुभव नहीं किया जा सकता, लेकिन आत्मतत्व ने उसको अनुभव किया है कि हमारे अंदर किसी भी दृश्य को देखकर या किसी भी पठनीय वस्तु को पढ़कर हम अंदर आनंदित कैसे होते हैं, आनंद अंदर प्रफुल्लित कैसे होते हैं, या अंदर उन उन भावों को कैसे पनपते हैं, वो भाव कैसे पनपते हैं जो पठन सामग्री में जी स्थित है। तो इसका अनुभव कुछ हमारे नाट्य शास्त्र कार ने, भरत मुनि ने इसका अनुभव किया और उन्होंने एक सूत्र दिया, विभाव व अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाला आनंद ही रस कहलाता है। काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का, अगर जिस प्रकार शरीर में यदि आत्मा है तब तक शरीर चलता रहेगा, उसी प्रकार यदि आप किस कोई काव्य पढ़ रहे हैं उस काव्य में यदि आपको रस प्राप्त हो रहा है तभी तक आपको मजा है, आनंद आता है। रसहीन किसी काव्य को पढ़ने में आनंद ही नहीं आता। जिसमें आपको आनंद ना आ रहा हो ऐसे किसी काव्य को पढ़ना टाइम वेस्ट करने के बराबर होता है। इसलिए रस काव्य की आत्मा कहा गया है, वाक् रसात्मकम काव्यम। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व संभव नहीं, उसी प्रकार रसहीन कथन को काव्य नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार रस की आत्मा काव्य है। रस को समझाने के बाद रस की उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है, जो कि हमने पढ़ लिया है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। जो प्राचीन समय में जो हमारे नाट्य शास्त्री थे, सबसे ईसवी पूर्व द्वितीय शताब्दी के नाट्य शास्त्री आचार्य भरत मुनि, उन्होंने रस कितने प्रकार के बताए? 8 प्रकार के। लेकिन हिंदी में रस 10 प्रकार के माने गए हैं, जो कि हम 10 प्रकार के रसों का अध्ययन करेंगे। रस की व्याख्या करते हुए भरत मुनि कहते हैं कि सब नाट्य उपकरण द्वारा प्रस्तुत एक भावमूलक कलात्मक अनुभूति है। रस का केंद्र रंगमंच है, भाव रस नहीं, उसका आधार है, किंतु भरत ने स्थायी भावों को ही रस माना है। जो हमारे अंदर जो पहले से पूर्व से विद्यमान है रस, उन्हें ही स्थायी भाव माना है, उन्हें ही रस माना है, जो स्थायी भावों में ही रस होता है। रस सिद्धांत का काव्य शास्त्र का अति प्राचीन और प्रतिष्ठित सिद्धांत है। नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि का यह सूत्र रस सिद्धांत का मूल है। विभाव अनुभव व्यविचारी संयोग रस निष्पत्ति है, अर्थात विभाव अनुभव व्यविचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस रस सूत्र का विवेचन सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया। साहित्य को पढ़ने, सुनने, नाटक आदि को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस के मुख्य रूप से 4 अंग माने जाते हैं, जो इस प्रकार है। जैसा कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में सूत्र दिया था, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति, तो सबसे पहले उसमें है विभाव। विभाव जो व्यक्ति वस्तु परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। देखिए, आप पारिभाषिक शब्दावलियों को न लेकर आप ऐसे समझिए कि हमारे अंदर रस पहले से विद्यमान है, हमारे अंदर पहले से विद्यमान है, अब जरूरत होती है कि उन्हें उद्दीप्त करना। जो जो रस हैं, उनको किस प्रकार के साहित्य को पढ़ने से वो रस हमारे अंदर उद्दीप्त हो जाते हैं। क्रोध हमें आता है, क्रोध हमें डाला नहीं जाता बाहर से, हमारे अंदर क्रोध पहले से विद्यमान है, बस सिचुएशन को देखकर, दृश्य को देखकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। हमारे अंदर श्रृंगार भाव, रति भाव पहले से विद्यमान है, बस उस सीन्स को देखकर, उस घटना को देखकर, साहित्य को पढ़कर वो उद्दीप्त हो जाता है। हमारे अंदर स्थायी भाव रस पूर्व में ही विद्यमान है, पहले से विद्यमान है, बस जरूरत होती है कि उनको वैसा माहौल दिया जाए, ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाए कि उस रस की उत्पत्ति निष्पत्ति हो सके। सबसे पहले आलंबन विभाव। जिन वस्तुएं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। जिससे नायक और नायिका, ये आलंबन है, ये आधार है। सबसे पहले रस निष्पत्ति का सबसे पहला आधार है नायक और नायिका का होना। ठीक है, इसके भी 2 भेद हैं, आश्रय और विषय। जिस व्यक्ति के मन में रति आदि भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। विषय, जिस वस्तु व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं। जैसे मेरे मन में कोई रस उत्पन्न हो रहा है तो मैं क्या कहलाऊंगा? आश्रय कहलाऊंगा। और किस चीज को देखकर मेरे मन में रति भाव उत्पन्न हो रहा है वो मेरा विषय होगा। ये आलंबन विभाव है। इसके बाद उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के अंतर्गत ही आश्रय विषय आते हैं। उद्दीपन विभाव, विभाव के अंदर का थी है, आश्रय के मन के भावों को उद्दीप्त करने वाले विषय की बाह्य चेष्टाओं जिसे वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जिस शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में आकर्षण उत्पन्न होता है, उस समय शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं वन का आश्रम में मादक और एकांत वातावरण दुष्यंत के मन में रति भाव को और अधिक तीव्र करता है। अतः यहाँ शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं तथा वन का एकांत वातावरण आदि को उद्दीपन विभाव कहा गया है। विभाव दो प्रकार के होते हैं जिससे कि मैंने आपको बताया, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव वो होता है जिसको देखकर सबसे पहले जो हमारा आश्रय है, रस की उत्पत्ति का प्रथम कारण है आलंबन। अर्थात सर्वप्रथम नायक और नायिका को देखकर सबसे पहले रस की उत्पत्ति में नायक और नायिका होने चाहिए, तभी हमारे अंदर रस की उत्पत्ति। दो कैरेक्टर ऐसे होने चाहिए जिससे हमें रस की उत्पत्ति हो। तो उसमें आलंबन में भी दो भेद हैं, आश्रय अर्थात जो व्यक्ति रस उत्पत्ति करना चाहता है, जो व्यक्ति के अंदर रस की उत्पत्ति होगी वो आश्रय है, और जिस वस्तु को देखकर रस की उत्पत्ति होनी होगी वो क्या होगा, विषय होगा। उसके बाद उद्दीपन विभाव, ये तो हो गया सबसे पहला प्रथम चरण है आलंबन। उसके बाद उद्दीपन, उद्दीपन विभाव उसे कहते हैं जो हमारे आसपास का वातावरण है, श्रम में मनोहर है, जो हमारे आसपास का वातावरण जिसको देखकर जो प्रेक्षक होता है, जो दर्शक होता है, उनके अंदर विद्यमान स्थायी भावों को उद्दीप्त करता है, उसे कहते हैं उद्दीपन विभाव। इस प्रकार से दो विभाव हो गए, आलंबन और उद्दीपन। अनुभव, अनुभव आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं